राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 4 फरवरी 1994 को प्रातः लगभग 11:30 बजे खेड़ापा में हुआ। राम
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति
जय सियारा
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः हम बच्चे थे छोटे तब से ये हमारे को सिखाया गया था। इस शाखा की इस तरह की परंपरा है बचपन से ही बताई गई थी। यद्यपि हरदीव देश महाराज की बंधन आयोजन प्रथम कर्म निकाय के बैठ अखिल भवनी अवशोधी समान में भूषण
क्या परंपरा कैसे
मानो ये साखियां मैंने पढ़ी। अभी महाराज पढ़ रहे थे और थोड़ी साखियां पढ़ी तो ये मेरे मन में भी आई और मैंने पढ़ी और जागर में पढ़ाई करता हूँ। आप सुनते ही हैं बरसों से जहाँ जब व्याख्यान देता हूँ तो इसी क्रम से इन साखियों को पढ़ता हूँ। ये दुनिया में दोहा कहलाता है हमारे यहाँ साखी कहलाती है उसको साखी कहते हैं ये साक्षी है। तो साखियां जितने संतों की है उन संतों के साखियों में खास तत्व भरा हुआ है परमात्मा गुरु और संत ये तीन बात खास आती है। चौथी आती तो भक्ति आ जाती है चार बात आती है हरेक संत की वाणी में ठीक तरह से देखा है। और ये जो क्रम है पाठ का क्रम है वो भी इस क्रम में बताया गया है। यद्यपि हरदेव दास जी महाराज की वाणी में अधम जी बताया ये नहीं है वंदन हरि गुरुजन प्रथम कर्मन कायक वेण अखिल भवनियों शोधिये समाना कोई शरण ये है सागी खास। परंतु हम लोगों को ये नहीं सिखाई थी वही सिखाई जो आप तो बोली अभी। तो कारण क्या है इसमें हरदेव दास महाराज का नाम नहीं आता इस बात को लेकर के वो नहीं सिखाई और ये सिखाई है बचपन से हमारी क्रम से कि ये पाठ का क्रम है इस तरह पाठ का क्रम होना चाहिए। ये स्वतः स्वाभाविक हरेक रामस्ने साधु जितने हैं जो सिंथल खराबे के हैं उनकी ये बात है ये क्रम बताया गया है और इस क्रम से ही पाठ होता है और हुआ है और हमने पढ़ा है सुना है। और संतों की वाणी की बातें हुई। दूसरी बात आज जो जागरण है ये संत महात्माओं की जो तिथियां देखी जाती है उनमें जन्म की तिथि वो खास नहीं जानते। कृष्ण भगवान के तो कृष्ण है राम है आदि अवतार है इनकी जन्म तिथि वो लेते हैं और हमारे यहाँ इनका जो जन्म तिथि है अंत में वैकुंठ पधारे हैं वो जो तिथि है वो ली जाती है उसी को जागरण करते हैं उसी को ही जागृति रहते हैं। तो उस दिन महाराज की वहां पर क्या है कि कबीरा सब जग डर पे मरण से मेरे मरण आनंद कब मेरिए कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद। तो वो मृत्यु में परमानंद की प्राप्ति को कहन मानते हैं। इस वास्ते ये दिन एक बड़ा उत्सव का माना जाता है अच्छा माना जाता है श्रेष्ठ माना जाता है संतों की परंपरा में ये बात है। उसमें भी कबीर साहब की बात मैंने कही तो वेद पुराण संत मत हो सकल शुक्ल फल राम सने हो। वेद पुराण संत मत तो संत मत एक मत है अलग, जैसे वेदों का मत है जैसे पुराणों का मत है ऐसे एक संत मत है। तो संत मत में कबीर साहब को सबसे ऊंचा माना है। इन्हें कयो ने इसको संतों ने कहा ये चक्रवर्ती संत हुए, मानो सबसे ऊंचे राजा होता है चक्रवर्ती सबसे ऊंचा। तो संत समाज में कबीर साहब का दर्जा ऊंचा है, वे चक्रवर्ती संत हुए। तो वे कहते हैं कि भाई मरने में आनंद है, सब जग डरते मरण से, मनुष्य के मरण का भय होता है। पातंजल योग दर्शन में अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा क्लेशा पांच क्लेश है। तो क्लेश कर्म विपाकाशीर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, ईश्वर का जो वर्णन हुआ है क्लेश कर्म विपाक आशय इससे अपरामृष्ट बिल्कुल असंबद्ध, और पुरुष विशेष उसका नाम ईश्वर है, और मनुष्य इनसे बंधा हुआ है क्लेश कर्मों से। तो ये क्लेश है, उन क्लेशों में अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश। अभिनिवेश नाम है मरण भय का, मृत्यु को जो भय होता है मृत्यु से, ये एक क्लेश है, बड़ा दुख है। तो क्लेश से ऊंचा उठ जाए हम तब ठीक रहेगा, शांति को प्राप्त हो जाए। गीता में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष दर्शन में आया है, और जन्म मृत्यु जरा दुख है विमुक्ता अमृतम अश्रुतेश आया है। तो उनमें खास करके जरा की इतनी बात नहीं ली है, जन्म मरण लिया है, उसमें भी मरना फिर कभी न पड़े ऐसे जन्म से रहित। तो संसार में ज्यादा से ज्यादा दुख क्या है, मृत्यु का दुख है। मृत्यु के दुख के समान कोई दुख नहीं है संसार में, सबसे अंतिम दुख है ये मृत्यु का। जैसे किसी कसूरदार को दंड दिया जाए तो वह दंड कई तरह जुर्माना होता है, कई तरह कारागार होती है, ऐसे कई दंड दिए जाते हैं, काला पानी दे दिया जाता है, पर उनमें सबसे विशेष दंड क्या है, मृत्यु दंड है। मृत्यु दंड के बाद कोई दंड नहीं है, ये आखिरी दंड है। इनमें सब दूसरे दंड सब अंतर्गत आ जाते हैं, कोई इससे बढ़कर कोई दंड है ही नहीं। तो मृत्यु है ये बड़ा भय दुखदायी है। पतंजलि योग विदुषोरूपी तथा दृढ़ो विनिवेश, विदुषो भी लिखा है, जो जानकार है अच्छे उन लोगों को भी ये मरण भय होता है। तो मरण भय से रहित हो जाना है ये मनुष्य का खास काम है। मृत्यु से मरने वालों को भी दुख होता है, और जो घर में से कोई मर जाता है तो उनको भी सबको दुख होता है। तो मृत्यु का दुख है उससे सर्वथा बच जाए। तो कबीर साहब ने वही बात कही कि सब जग डर पे मरण से, और मेरे मरण आनंद, मरण है वो आनंद है कि कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद। तो जीवन मुक्त होते हैं और विदेह मुक्त होते हैं, तो विदेह मुक्त जिस क्षण ज्ञान हुआ उस समय भी हो जाते हैं, और फिर जीवन मुक्ति का आनंद है, जीवन मुक्त का शरीर भी छूट जाता है, तो उसको विदेह केवल कहते हैं। तो वो जो मुक्ति हो जाए सर्वोपरि, वो ही एक आनंद का खुशी का प्रसन्नता का दिन होता है। तो संत महात्माओं का वही दिन मनाया जाता है, उनकी बरसी आती है तो बरसी के दिन वो दिन मनाते हैं। उस दिन सब भगवान का स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, जिससे उनको ये पद मिला है, वो जो साधन है, वो जो हमारे को बता गए है, उसके अनुसार हम चले उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करें। उसी दिन को मनाने के लिए आज का दिन है, ये श्री दयाल जी महाराज का दिन है। संत जितने हुए अपने सिंथल खरापा संत रैना आदि साकुरा, ये खास रामसनी संप्रदाय कहलाती है। इसमें क्षमा करना, मैं पक्षपात तो नहीं करता हूँ, पर तो पक्षपात हो जाता है। दयाल जी महाराज बड़े प्रभावशाली संत हुए, ये दूसरे संतों की तरह नहीं हुए हैं, इसमें विलक्षणता है। इससे पहले से रामदास जी महाराज की विलक्षणता है। दयाल जी महाराज में कविता आदि की और भजन की बहुत विशिष्टता है, और श्री रामदास जी महाराज में जो विदेह केवल होता है, और जिसमें सहजा मार्ग सहज का सहज किया विश्राम, हरिया जीव और शिव का एक नाम एक ठाम, हरिया जयवर दास गुरु नाम निरंजन देव, काया देवर देहरो सहज हमारी शिव। तो सहज सेव है, ये सहजावस्था का जितना है रामदास जी महाराज ने वर्णन किया है, इतना मैंने कथा वाणी सुनी है, इतना वर्णन दयाल जी महाराज में भी नहीं आया है। सहजावस्था का वर्णन मैंने ख्याल बोलू सूर सागर में रह करके वाणी पूरी सुनी है मैंने। रामदास जी महाराज सुनाओ, दयाल जी महाराज की बात सुनाओ, और शिवराव जी महाराज आदि विरुद्ध शाखा की बातें सुनाओ, सुनी है। तो सुनी में इतना सहजावस्था का वर्णन नहीं आता है, दादू जी आदि सब में नहीं आता है, कबीर साहब के पद में कुछ आता है। तो सहजावस्था का एक वर्ण है, वो बहुत विलक्षण है। सहज हमारी सेव, कितना अपना परिचय दे दिया एक साखी में, जय मलदास हरिया जय मलदास गुरु और राम निरंजन देव, काया देवल देहरो घटी में घटी में देवल घटी में देवा घटी में सहज करे मन सेवा। तो सहज भाग का वर्णन बहुत विलक्षण रीति किया है महाराज ने। नाम परिचय में भी प्रकरण है, सहज तन्मन कर सहज पूजा, सहज सा देव नहीं और पूजा, इस तरह से सहजावस्था का वर्णन है। ऐसे कबीर साहब में साधो भाई सहज समाधि भली, उन्होंने सहज समाधि का बहुत विशेष विकास, सबसे सहज अवस्था है। सहज अवस्था का तात्पर्य क्या है, बड़ा सीधा सरल है। सहज स्वतः सिद्ध स्वाभाविक, ये जितनी अवस्थाएं प्राप्त की जाती है समाधि आदि का, वो सहज नहीं है। सहज समाधि स्वतः सिद्ध का नाम है। गीता ने तो कर्मियों को सहज बताया है, कर्मों के विषय में कितनी विलक्षण बात बताइए। सहजन कर्म कौन थे, सदोष में नित्य जेत, सहज कर्म है उसका त्याग नहीं करना चाहिए। जो स्वाभाविक तुम ब्राह्मण आश्रम आदि का जो कर्म है वो सहज कर्म है। तो सहज के दो अर्थ होते हैं, एक तो स्वाभाविक और एक सह जाए थे, जो जन्म के साथ ही पैदा हो गया उस नाम सहज है। तो जन्म जिसमें जन्म वर्ण में जिस वर्ण में जन्म लिया, ब्राह्मण के जन्म हुआ, तो ब्राह्मण का कर्म हुआ सहज कर्म होता है। क्षत्रिय जाति में जन्म लिया तो क्षत्रिय के कर्म होते वो सहज कर्म होते हैं। वैश्य घर में जन्म लिया तो वैश्य के कर्म वो सहज होते हैं। शूद्र के घर में लिया तो शूद्र के कर्म वो सहज कर्म होते हैं। तो सहज कर्म सदोष में, सहजन कर्म कौन थे सदोष में थे, सहज कर्म में दोष आदि त्याग नहीं करना चाहिए। अर्जुन क्षत्रिय धर्म में हिंसा मानते थे कि ये बड़ा तत्किन कर्मणि घोरे मांगनी हो, जैसे केशव घोर कर्म कहा है इसको। भगवान ने इसका उत्तर दिया, श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मा सुदृष्टता स्वधर्मे जन श्रेय पर धर्मो भयावह। तो उसको घोर कर्म कहा उस भगवान कहते नहीं, अश्रेयान स्वधर्म विगुण, विगुण कहते हो तुम घोर बताते हो, वो सहज कर्म है वो श्रेयान है, सबके लिए श्रेष्ठ है। उसी को बताया है, समो दमस तप शोचम शांति मार्जम ज्ञानम विज्ञान आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, छात्र कर्म स्वभावजम, वैश्य कर्म स्वभावजम, शूद्र स्यापी स्वभावजम। वो स्वभाव जो है वो सहज कर्म है, और वो शुभ होता है, सहज होता, सहज भी होता है, मनुष्य जन्म के साथ पैदा हो गया। ऐसे मनुष्य का परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेना ये सहज कर्म है। ये तो लोगों ने अभी मान रखा है कि बड़ा भारी कठिन काम है, परमात्म तत्व की प्राप्ति बहुत कठिन है। कठिन नहीं है, ये तो सहज है। मनुष्य जन्म हो जाए उसके बाद परमात्मा तत्व की प्राप्ति तो सहज है। स्वतः गीता की टीका लिखने लगे जब तीसरे अध्याय का विवेचन करने लगे तो विवेचन से मैं वर्षों तक करते इतना ख्याल नहीं हुआ, टीका लिखते समय ख्याल आया, क्योंकि टीका लिखते तो सावधानी करनी पड़ती है, पूरा पूरा विचार कर हर एक आदमी पढ़ेगा देखेगा तो जहां तक पड़े अपनी बुद्धि लगाकर ठीक समझना है। तो उसमें हमारे समझ में ये आई बात कि मुक्ति जो कल्याण की बात है, मैं एक बात कहता हूँ आप उल्टा अर्थ मत लेना, दुरुपयोग हो जाएगा। मुक्ति स्वतः हो जाएगी, अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार ठीक मर्यादा से चलो तो मुक्ति के लिए स्वतंत्र साधन करने की जरूरत नहीं है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य सिद्धि विन्दति मानव, अपने कर्मों से परमात्मा का पूजन करके वो परमात्मा प्राप्त हो जाता है। देवान भावयता नेना ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्त श्रेय परम अवाप्य था, परम श्रेय कल्याण के रहे जिसे बड़े कोई श्रेय नहीं वो उसको हो जाएगा। अपने कर्मों के द्वारा उन पूजन परस्पर सबका पूजन किया जाए, समझा थे वो तो सामने सब पराधर रख दिए, भोजन के सब पदार्थ रख दिए सामने और उनके हाथ के यहाँ पर एक लकड़ी बांध दी ऐसे ऐसे और दोनों बैठे हैं। अब भोजन सामग्री सब सामने परंतु अब खाओगे हाथ ऐसा करे तो खा सकते है ना, अब ऐसे हाथ करे नहीं, यहाँ लकड़ी बनी गई है तो कैसे खाओगे।